निक ने जन्नत को बचाने की बात कही थी, लेकिन उसने उसे साफ इनकार कर दिया था। वहां से गुस्सा होकर निक बस स्टॉप पर गया था। निक वहां पहुंचा तो प्रांजल अभी तक वहां नहीं आई थी। निक वहां एक बेंच पर बैठकर प्रांजल का इंतजार कर रहा था। प्रांजल वहां पहुंची तो उसकी नज़र निक पर पड़ी। उसे वहां देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे पता था कि जीजू आप जरूर आओगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना पहले ही आकर बैठ जाओगे। सॉरी, लेकिन बस एक घंटा लेट हूँ। मुझे लगा था कि मुझे आपका इंतजार करना पड़ेगा और फिर मायूस होकर घर लौटना पड़ेगा, प्रांजल ने उसके पास आते ही कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने आपसे बहुत रूडली बात की थी। आज दोपहर मैंने जो भी बर्ताव किया उसके लिए सॉरी जीजू, लेकिन आपके लिए आपका काम हमेशा से ज़रूरी रहा है। अगर आप आज नहीं आते तो भी मैं आपसे नाराज़ नहीं होती। मैं ये सोच लेती थी कि आपकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा किसी और को होगी, निक ने मायूस होकर कहा। मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है परी, जिसे मेरी ज़रूरत थी मैं गया था उसके पास, लेकिन वो अपने बुरे हालातों से खुश है। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अपने बुरे हालातों से कोई खुश नहीं होता। हो सकता है कि वो आपकी जान खतरे में ना डालना चाहता हो, इसलिए उसने ये फैसला लिया हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, निक ने खोए हुए स्वर में कहा। उसकी आंखों के सामने जन्नत का मायूस चेहरा घूम रहा था। प्रांजल की बात सुनकर निक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने जन्नत का चेहरा घूमने लगा। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लगभग 8 बजे के करीब बस आ गई। जीजू चलें, बस आ गई है, प्रांजल ने बस की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं परी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं कल जाने के लिए हम दोनों की फ्लाइट की टिकट बुक करवा लूंगा, लेकिन अभी मुझे कहीं और जाना होगा। प्रांजल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर मायूसी थी। प्लीज परी, बस आज रात तक का वक्त दे दो, निक ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला। प्रांजल ने कहा, ठीक है जीजू, लेकिन मैं अब वापस घर नहीं जा सकती। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके घर चल जाऊं। वहां जाना सेफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चली जाओ। देखो घर पर इस वक्त कोई नहीं होगा, तो प्लीज किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने आपका पता करने के लिए आलिया को फोन किया था, तब जिनी वहां आई हुई थी, प्रांजल ने बताया। निक ने चौंकते हुए कहा, क्या जिनी? लेकिन वो यहां पर इंडिया में कैसे है? वो तो यूएसए? मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अभी कुछ देर पहले ही जिनी घर पहुंची थी। आलिया उस वक्त घर से जा ही रही थी। कोई बात नहीं जीजू, मैं जिनी के साथ रह लूंगी। ओके, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ, निक ने कहा। मैं खुद से चली जाऊंगी। नहीं, यहां से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं छोड़ दूंगा, निक ने कहा और एक ऑटो को रुकवाया। वहां जल्दी से उसने परी को अपार्टमेंट तक छोड़ा और वहीं से सीधा ऑटो लेकर जन्नत बाजार के लिए निकल गया। इस जिनी का भी कुछ नहीं हो सकता, यहां ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, ऊपर से वो भी यहां आ गई। एक बार जन्नत को वहां से निकाल लूं, फिर सबसे पहले परी और जिनी को यहां से भेजूंगा, निक ने अपने मन में कहा। निक जन्नत बाजार पहुंचा तब रात के 9:30 बज रहे थे। जन्नत डांस करने के लिए तैयार होकर आई थी। वो आदमी भी वहीं पर बैठा था जिसने जन्नत को खरीदा था। निक जन्नत बाजार पहुंच चुका था, लेकिन सबकी नजरों में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो जन्नत के रूम में छुपकर बैठ गया था। फुलवा भी वहां उसके पास थी। इन सबके बीच रूपाली की अलग ही प्लानिंग चल रही थी। वो इतनी भीड़ में भी सुनहरी और जन्नत पर नजर बनाई हुई थी। सुनहरी ने इधर उधर देखते हुए अंकल से पूछा, एनजे साहब कहाँ हैं? आज अपनी फेवरेट जन्नत को देखने नहीं आए? वो यूएस गया है किसी काम से, अंकल ने छोटा सा जवाब दिया। रूपाली भी वहीं पास में खड़ी थी। उसकी बात सुनकर उसने सोचा, अकेले ही चले गए, जरूर मेरे पासपोर्ट से जुड़े हुए किसी काम से गए होंगे। भगवान उन्हें उनके काम में सफलता दें। होप सो कि आज निक और प्रांजल मिलकर प्रियल को ढूंढ ले और हम लोग जन्नत को सेफ यहां से निकाल लें, अंकल ने आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना की। लगभग 2 घंटे बाद जन्नत बाजार की महफिल खत्म हो चुकी थी। अंकल सुनहरी से बहाना बनाकर जन्नत को बचाने के लिए अपनी टीम के पास चला गया। वहीं सब लड़कियां अपने अपने काम पर चली गईं। सुनहरी ने जन्नत को अपने कमरे में जाने का इशारा किया। उसके वहां से जाते ही सुनहरी, रूपाली और मंत्री का बेटा वहां पर बैठकर डील फाइनल कर रहे थे। उसके पास नोटों से भरा हुआ एक बैग था। आज से जन्नत मेरी, उस आदमी ने बैग को सुनहरी की तरफ खिसकाते हुए कहा। जी जरूर, पैसे पूरे तो लेकर आए हैं ना आप? बोलते हुए उसने बैग खोला। सामने बहुत सारे पैसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। ठीक से गिन लो, जितने तुमने मांगे थे उससे ज्यादा ही होंगे। अब जल्दी से मेरे हवाले कर दो और मुझे जन्नत की सैर करने दो, उस आदमी ने हंसी के साथ कहा। मैं जन्नत को लेकर आती हूँ, कहकर रूपाली वहां से जाने लगी कि सुनहरी ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर चाय नाश्ता और गपशप हो जाए, उसके बाद ले जाना। उसकी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा नाराज हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने यहाँ चाय नाश्ता और गपशप के लिए पैसे नहीं दिए हैं, जिस चीज के पैसे दिए हैं उसे अभी मेरे लिए लेकर आओ। अरे साहब, आप तो नाराज हो गए, लड़की अभी यहाँ से नाच कर गई है, कुछ खा पी लेने दीजिए, आ जाएगी, कहीं भागे थोड़ी ना जा रही है, आपकी ही तो है, सुनहरी ने उसे शांत कराते हुए कहा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। रूपाली ने अपने मन में सोचा, यही मौका है जब मैं जन्नत को यहाँ से निकाल कर ले जा सकती हूँ। मुझे कैसे भी करके उसे यहाँ से निकालना होगा। ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगी कि मौत की भीख मांगेगी। इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ताई, मैं जन्नत को देख कर आती हूँ और उसे सब समझा भी दूंगी, कहीं उसके नाटक ना शुरू हो जाए। रूपाली ने बहाना बनाया और वहाँ से खिसक ली। रूपाली वहाँ से निकली और जल्दी से किसी को फोन मिलाया। गाड़ी तैयार है ना साहब? मैं लड़की को लेकर अभी 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, रूपाली ने घबराई हुई आवाज में कहा। हाँ हाँ, सब तैयार है, हम लोग तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहे थे, सामने से एक आदमी की आवाज आई। ठीक है, फिर मैं आती हूँ, कहकर रूपाली ने कॉल खत्म कर दिया। उसने इधर उधर देखा तो अभी तक लड़कियां चहलकदमी कर रही थी। उन सबके बीच उसके लिए जन्नत को कमरे से निकालकर उस आदमी तक पहुंचाना आसान नहीं था। वो उन लड़कियों के पास गई और जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? पता है ना धंधे का टाइम है, जिसको कस्टमर मिल गया है अच्छी बात है, वरना जाकर रोड पर खड़ी हो जाओ। रूपाली ने उन्हें डांट डपट कर वहां से हटा दिया। वो वहां पर खड़ी होकर लड़कियों के जाने का इंतजार कर रही थी, हर एक सेकंड उसके लिए बहुत कीमती था। वहीं दूसरी तरफ जन्नत अपना डांस खत्म करके अपने कमरे के पास पहुंची, जो कि मंदिर वाले हिस्से में बना हुआ था। उस हिस्से में जन्नत और फुलवा के अलावा और कोई नहीं जाता था। जन्नत वहां गई तो वहां की लाइट बंद थी और काफी अंधेरा था। अचानक उसे सामने से एक भागती हुई परछाई दिखाई दी। उसे देखकर वो थोड़ी घबरा गई। जन्नत ने इधर उधर देखा लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे कोई नहीं नजर आया। उसे अपना भ्रम समझकर जन्नत आगे बढ़ने लगी थी, तभी किसी ने सामने से आकर उसके सिर पर 2-3 बार किए। लगता है ये बेहोश हो गई है, अब इसे यहाँ से ले जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, किसी की दबी हुई आवाज आई। ये आवाज किसी लड़की की थी।
जन्नत वहां पर बेहोश होकर गिर गई तो एक और आदमी वहां आया और उसने उसे बोरे में डाला। सबकी नजरों से छिपाते हुए वो उसे गाड़ी में डालकर ले गया। उसके साथ वो लड़की भी मौजूद थी।